बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में दहशतगर्दी। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताल्लुक से अवाम के साथ ही सियासी और सहाफती हलकों में भी तश्वीश काफ़ी बढ़ गई है और बाज़ सियासी और सहाफती हलकों ने मौजूदा हुकूमत में दहशतगर्दी से निमटने में संजीदगी के फुकदान का भी इल्ज़ाम लगाया है। चुनांचे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुनव्वर हसन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर दहशतगर्दी से निमटने के लिए लाजमी संजीदगी नहीं पाई जाती। इसी के साथ बाज़ कालम नवीसों ने भी दहशतगर्दी ख़त्म करने के हवाले से मौजूदा हुकूमत में संजीदगी न पाए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए लिखा है कि हुकूमत के पास दहशतगर्दी से निमटने के लिए बकौल उनके कोई वाजह पॉलिसी नहीं है। यह ऐसी हालत में है कि चहलुम और क्रिसमस के नज़दीक आने पर शिया मुसलमानों और ईसाई बिरादरी के लोगों में यह खदशा भी पाया जाता है कि उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। शिया मुसलमानों के पास इस खदशे की माकूल वजूहात भी हैं। अभी चंद ही रोज़ कबल लाहौर में एक मारूफ जाकिर हुसैन अल्लामा नासिर अब्बास को शहीद कर दिया गया। इसी के साथ रावलपिंडी में एक इमाम बारगाह पर हमले की कोशिश की गई जो नाकाम बना दी गई। उधर लाहौर में क्रिसमस की एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने भी दहशतगर्दी और फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी के हवाले से तश्वीश जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कुछ गुमराह लोग हैं जो फसाद बरपा करते हैं, मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, इन्हें रोकना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बाज़ कन्फ्यूजन भी पाए जाते हैं, लेकिन एक बात जो वाज़ह तौर पर महसूस की जाती है और जिसकी जानिब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने भी इशारा किया है वो यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की अहम तरीन वजह मजहबी मुनाफरत है। आज के प्रोग्राम में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत और फ़िरकावाराना इंतहा पसंदी की जड़ें कहाँ हैं, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि अब तक मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या ठोस इकदाम किए गए। पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत को हवा देने में अलकायदा और तालिबान और इनसे वाबस्ता ग्रोहों का किरदार क्या रहा है, और इसी के साथ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रोहों के पनपने और उनके ताकतवर होने के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा रहे हैं और मजहबी मुनाफरत और इंतहा पसंदी के फ़रोग के मराकज़ की फंडिंग कहां से होती है। हुकूमत को इन मराकज़ का इल्म है या नहीं, और अगर है तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई मुअस्सर कदम उठाने में रुकावट क्या है। इन सवालों का जवाब हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस ताल्लुक से हमारी रिपोर्ट।
पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में बुध की रात से शुरू होने वाली फौजी कार्रवाई बदस्तूर जारी है और कहा जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन खबरों में हलाकतों की तादाद 53 बताई गई है। पाकिस्तानी ज़रा इबलाग का कहना है कि अभी तक ये बात वाज़े नहीं है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से जारी सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले आम शहरी हैं या शिद्दत पसंद। फौजी ज़राए का कहना है कि मारे जाने वाले सभी लोग तालिबान थे, ताहम मकामी अफराद के मुताबिक इस ऑपरेशन में आम लोग भी मारे गए हैं। काबिले जिक्र है कि अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ इलाके शिमाली वजीरिस्तान में फौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान बुध के रोज़ झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब एक खुदकुश हमलावर ने मीर अली की चेक पोस्ट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 5 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। अस्करियत पसंदों ने बुध के रोज़ बमबारी में जख्मी सिपाहियों को वापस लाने वाले काफिले पर भी हमला किया था और इसके बाद फौज की जानिब से मार्टर, आर्टलरी और गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए अस्करियत पसंदों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। शिमाली वजीरिस्तान अस्करियत पसंदों का गढ़ तसव्वुर किया जाता है, जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और अलकायदा के अस्करियत पसंद बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी इलाके में अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले भी किए जाते रहे हैं, जिनमें TTP के सरबरा हकीमुल्ला महसूद समेत कई अहम दहशतगर्द मारे गए हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई है जब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी काबीना की कौमी सलामती कमेटी ने अपने इजलास में तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अज़्म दोहराया था। سرکاری ذرائع نے اس بات کا بھی اندیہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں حکومت ناکام رہتی ہے تو پھر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دیگر اقدامات پر بھی غور کیا جائے گا۔ پاکستان کو مختلف طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہے، تاہم اس کا بڑا حصہ طالبان اور اس کی ذیلی تنظیموں کے دہشت گردانہ اقدامات سے مربوط ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں کی جڑیں ملک کے قبائلی علاقوں میں سرگرم شدت پسند گروہوں سے جڑی ہوئی ہیں، جن میں تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ سر فہرست ہیں۔ پاکستان میں اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے حکومت پاکستان کی پالیسی پوری طرح سے واضح نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے طریقہ کار کے بارے میں میڈیا کے سامنے کوئی واضح پالیسی نہیں لائی گئی کہ حکومت مذاکرات کا آغاز کس مقام سے کرے گی اور کہاں لے جا کر اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ بعدی نظر میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت طالبان کی مرکزی قیادت کے بجائے اس سے وابستہ چھوٹے چھوٹے شدت پسند گروہوں پر ہاتھ رکھنا چاہتی ہے۔ شاید اس کی دلیل یہ پیش کی جائے کہ فوری طور پر پاکستان کو اندرونی تشدد سے روکنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کا یہ اقدام اس معاملے کے طویل المدت تصفیے کے تناظر میں کس حد تک مددگار ثابت ہوگا۔ اگر عسکریت پسندوں سے مذاکرات کا مقصد تشدد کا خاتمہ ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے معاہدے اور ان کا نفاذ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ جہاں تک موجودہ فوجی کارروائی کی بات ہے تو سرکاری ذرائع کے دعووں کے مطابق فوج کو شدت پسندوں کے حملے کے جواب میں یہ کارروائی کرنا پڑی ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی ادارے اس علاقے میں محدود پیمانے پر سرچ آپریشن کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد مشتبہ شدت پسندوں کی گرفتاری بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد سے ملک کے قبائلی علاقوں میں فوج کی جانب سے کی جانے والی یہ اب تک کی سخت ترین کارروائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شدت پسند طالبان کے خلاف جاری یہ فوجی کارروائی اسی حد تک محدود رہے گی یا پھر کسی منظم فوجی آپریشن کی شکل میں آگے بڑھے گی۔ پاکستان میں طالبان کی حامی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے طالبان کے سرغنہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد اپنے بیانات کے ذریعے ملک میں جس قسم کا ماحول پیدا کر دیا ہے، اس کے تناظر میں فوجی آپریشن کا لفظ انتہائی خطرناک اور نفرت انگیز بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم صوبے خیبر پختونخوا میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر حکومت علاقے میں فوجی آپریشن کرنا چاہتی ہے تو اسے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کے نئے سپہ سالار اور حکومت کے لیے قبائلی علاقوں میں کی جانے والی حالیہ فوجی کارروائی کو کسی منظم فوجی آپریشن کی شکل دینے کا امکان نہیں ہے۔
ناظرین، پاکستان میں طالبان کے خلاف حکومت کی کارروائی سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آج اس پروگرام میں شرکت کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی گئی ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار یاور بخاری کو۔ لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے برِ صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین، اور کراچی سے اس بحث میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد عہد کو۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد جہاں یاور بخاری صاحب موجود ہیں، گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بخاری صاحب، پاکستان میں ان دنوں دہشت گردی کے تعلق سے عوامی، سیاسی اور صحافتی حلقوں میں خدشات اور تشویش کافی بڑھ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟
جی، وجہ صرف میں تو ایک ہی سمجھتا ہوں جی، کہ کوئی بھی پاکستانی حکومت جو بھی آئی ہے، یہ موجودہ حکومت بھی، اس سے پہلے والی حکومت بھی، ان حکومتوں نے کبھی سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا ہی نہیں ہے جی، کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں اور میڈیا بھی یہ سمجھتا ہے اور ہمارے جو سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی اور صرف خالی خولی بیانات دے دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، واردات ہوتی ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی مذمت کر دی جاتی ہے اور بس اس کے بعد اسے بھلا دیا جاتا ہے، پھر اگلے واقعے کا انتظار کیا جاتا ہے اور پھر اگلے واقعے میں وہ پھر اسی طرح بیان دے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، عوام میں کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ مذہبی منافرت ان میں، میں یہ علن اعلان اور یہ میں وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام امن پسند عوام ہے اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مذہبی جلوس خواہ وہ ربیع الاول کے حوالے سے ہو خواہ وہ محرم کے حوالے سے ہوں، وہ ان میں دونوں فرقے جو ہیں اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی یہ ان میں شریک ہوتے ہیں. آج بھی اب بھی اس دور میں بھی پاکستان میں جتنے محرم کے جلوس ہائے تعزیہ اور ذوالجناح نکلتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے تعزیے جو ہیں وہ اہل سنت نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ تعزیے لے کے چلتے ہیں اور اہل تشیع ان کے پیچھے عزاداری کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو عوامی سطح پر کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے. ہاں ایک تشدد پسند گروہ انتہا پسند سوچ جو ہے وہ پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزدل حکمرانوں کی جو ہے یہ بے بسی اور ان کے جو خوف ہے وہ شامل ہے اور دوسرا اس میں بیرونی قوتیں شامل ہیں جن میں سب سے بڑی قوت جو ہے وہ استعماری قوتیں ہیں امریکہ وغیرہ ہیں اور ان کے حواری جو ہیں وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں وہ چونکہ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ وہ اس یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس کے ذریعے وہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر سکتے ہیں اور عوام کو آپس میں لڑا سکتے ہیں، اس لیے وہ لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ایسی قوتیں ہیں کہ وہ ہماری مسلح افواج پر بھی حملے کرنے سے باز نہیں آتی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ کون سے وہ انتہا پسندانہ سوچ ہے یا یہ کون سی اسلامی سوچ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں چیک پوسٹ پر جو حملہ ہوا ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی قوتیں ہیں جو نماز پڑھنے والا خود اللہ کا نام بھی لے رہی ہوں اور خود کو اسلامی بھی کہہ رہے ہوں، داڑیاں بھی ہوں اور سارا کچھ ہو اور جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہو. میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کے پیچھے جو قوتیں کار فرما ہیں وہ تو ان کو سپورٹ کر ہی رہی ہیں. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیں، وگرنہ وہ آج اپنی ایک موت سے ڈرتے ہیں، کل کو شاید ہو سکتا ہے حکمرانوں کا جو ہے وہ جس طرح اسلامی جمہوریہ ایران میں جنازہ نکالا گیا تھا شہنشاہیت کا، اسی طرح ہو سکتا ہے یہاں پر یہ جو سو کالڈ جمہوری قوتیں اپنی آپ کو کہتی ہیں ان کا بھی یہاں پر جنازہ نکالنا پڑ جائے عوام کو. تو جب تک یہ حکمران جو ہیں یہ سنجیدہ نہیں ہوں گے یہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں یہ نہیں کیا جائے. آپ دیکھیں ابھی ایک مثال واضح دیکھیں کہ ملا فضل اللہ جو اب طالبان کے سربراہ سمجھے جا رہے ہیں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہی یہ کراچی میں دیدار حسین علامہ دیدار حسین جلبانی کا قتل ہوا، لاہور میں عصمت اللہ معاویہ کا قتل ہوا، لاہور میں ناصر عباس کا قتل ہوا، علامہ ناصر عباس جو ہے ان کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. تو یہ اس کے بعد ہی یہ ساری دہشت گردی ہوئی اور پھر چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا. تو ابھی بھی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان سے مذاکرات کریں گے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نئے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان سے قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آج بھی جو ہے وہ پشاور ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں انہوں نے علل اعلان کہا ہے کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی آواز ہے، قوم چاہتی ہے کہ دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے، انتہا پسندوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کو کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی نہ کر سکے، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار نہ کر سکے اور پاکستان کے امن و امان کو تباہ نہ کر سکے. آرمی چیف کے جو اس بیان سے کافی امید عوام کو لگی ہے. آپ دیکھیں محرم یہ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی آمد آمد ہے اور ابھی تک جو ہے حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ یہ جو جلوس ہیں ان پہ پابندی اگر کوئی کسی طرف سے آئے تو وہ لگوائی جا سکے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عزاداری کے جلوسوں پر پابندی نہیں کی جا سکتی. یہ محرم الحرام میں جو واقعہ ہوا تھا یوم عاشور کے روز اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی وہ ایس ایس پی ڈی آئی جی نے یہاں پر پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں بتایا کہ جس مدرسے پہ حملے کی بات کی جا رہی ہے اس مدرسے کا کوئی بھی طالب علم اس میں مارا نہیں گیا اور ایون کہ کوئی نمازی اس میں نہیں مارا گیا، وہ باہر کے لوگ تھے جو وہ آئے ہیں جنہوں نے وہاں پہ سازش کی اور وہاں پر یہ سازش کے تحت ہنگامہ کیا اور اس کے نتیجے میں سات امام بارگاہ راولپنڈی میں، سات امام بارگاہ جو ہیں وہ ملتان میں جلائے گئے اور اب ایسی خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے جلوس نکلے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ لڑائی ہو جائے اور عوام آپس میں لڑ پڑے. عوام بالکل قطع نہیں لڑتے ہیں، سازشی عناصر جو ہیں ان کو حکومت کو کنٹرول کرنا ہوگا، اگر حکومت نے ان کو کنٹرول نہ کیا तो ये मुल्क की सलामती और बका के लिए खतरा हो सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया।
देखें कि उस एक जो रावलपिंडी में वाकया, उसके बाद एक सूबाई वजीर जो है वो खुद रावलपिंडी में बैठकर उन्होंने क्रैकडाउन किया और अभी तक वो क्रैकडाउन जारी है और बेगुनाह लोगों को रात के अंधेरे में उनके घरों से उठाया जाता है। इतनी शदीद सर्दी में उनको गर्म कपड़े तक पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती और नौजवान जो हैं शिया मुसलमान उनको उठा के वो ले जाते हैं और जेलों में उनको टॉर्चर किया जा रहा है और सिर्फ वो इंतहा पसंदाना सोचों को खुश करने के लिए कि वो शायद इनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए या इनकी बात मान लें। लेकिन वो कुव्वतें तो वो कुव्वतें हैं जिनके पीछे जो है बहुत बड़े हाथ हैं और वो पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्ला पाकिस्तान को खुदा न खास्ता जो है वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार करना चाहते हैं। तो ये हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे। हुक्मरान जो हैं वो अगर आज खौफ की वजह से बेबस नज़र आ रहे हैं या खौफ की वजह से वो किसी कार्रवाई से गुरेजा हैं तो मैं समझता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आज का बयान उनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि गुज़श्ता 2-3 दिनों से जब से वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ है यहाँ पर अब बाकी मुल्क में अमन व अमान है।
बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब।
इसी तरीके से उनको मैं ये भी समझता हूँ कि
बुखारी साहब हम आपकी तरफ,
लेकिन जब एक फरीक जो है वो अपने आप को रियासत के ऊपर जो है वो हावी कर ले।
शुक्रिया बुखारी साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। और नाज़रीन चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ बरसग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर एजाज हुसैन साहब मौजूद हैं। एजाज हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जनाब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने लाहौर में क्रिसमस की एक तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग मजहबी मुनाफरत फैला के फसाद बपा करते हैं। इस हवाले से मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मजहबी मुनाफरत से क्या ताल्लुक है?
जी शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त भी यही है कि देखिए जब कोई नौजवान कोई आमादा होता है दहशतगर्दी का इर्तकाब करने के लिए
जी,
तो उसके पीछे जो अवामिल जो होते हैं कारफरमा, उनमें यह देखा जाए कि उसने जब वो 12, 15, 16, 18, 20 साल की उम्र में क्या किया उसने। अब पाकिस्तान में चूंकि वसाइल की कमी की वजह से जो एक सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड जो है बड़ी क्लियर पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान के छोटे ज़िले हैं, छोटी तहसीलें हैं, वहाँ तरक्की नहीं हुई जानबूझकर, तो वहाँ के लोग देखिए उन्होंने तालीम भी थोड़ी बहुत लेनी ताकि रोज़गार मिल जाए। अब तालीम के लिए चूंकि इतनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और स्कूल्स नहीं हैं इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान के उन छोटे शहरों में, तो ये लोग मदरसों का रुख करते हैं। पाकिस्तान में जो हमारी जो वजारत है, वफाकी वजारत है जो इंटीरियर की दाखिला की, उसके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक आदाद व शुमार के मुताबिक कोई 18 से 20 हज़ार के लगभग जो है रजिस्टर्ड जो है मदरसे जो हैं कायम है पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में जो ये फैले हुए हैं। अब जो लोग जो हैं ये एक मेन स्ट्रीम जो है नेशनल करिकुलम को फॉलो नहीं कर पाते वसाइल की कमी की वजह से, उनके वालदेन कहते हैं कि चलो खाना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे और रोज़गार भी मिलेगा, तो मदरसे में भेज दें, हमारा तो कुछ खर्चा नहीं जाएगा। जब ये मदरसे में जाते हैं तो ये बड़े वल्नरेबल होते हैं ये बच्चे। 12 से 15 साल की उम्र में इन बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता है। सबसे पहले इनको पिक करके इनका ब्रेन वॉश करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं इनको, वो पर्टिकुलर इनको वो मखसूस लिटरेचर पढ़ाया जाता है मदरसों में, जिसमें ये बताया जाता है कि जिस फिरका से तुम ताल्लुक़ रखते हो वही सही फिरका इस्लाम का, इस्लाम को वही लेजिटिमेटली वही रिप्रेजेंट कर रहा फिरका, इसके अलावा बाकी दीगर जितने फिरके हैं वो गलत हैं। और फिर कुफर के फतवे भी लगाए जाते हैं कुछ फिरकों पर बारे में, शिया फिरका सबसे पेश है जिस पे ये इल्ज़ाम 1400 बरस से लग रहा है। अब ये रेडिकलाइज होकर जब बच्चा ये 18 से 20 बरस की उम्र में निकलता है तो उसे ना तो उसको कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का पता होता है, ना कोई पॉलिटिकल स्टडीज़ उसकी होती, ना हिस्ट्री का बताया, उसे सिर्फ सिंगल ट्रैक माइंड बना के ये बताया जाता है कि तुम्हारा फिरका ठीक है बाकी सारे गलत हैं। तो वो जब ये रेडिकलाइज हो के जब उसके हाथ में जब वेपन आता है तो वो हर उस शख्स को, हर उस तंजीम को, हर उस फिक्र को अपना दुश्मन समझता है जिसके बारे में उसे 8 से 10 बरस में उस मदरसे में उसका ब्रेन वॉश किया गया है। तो यही वजह है जब वो रिजॉर्ट करता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करे या वो किसी को टारगेट किलिंग में मुलव्वस होकर किसी को जो है जहां भाग करे, तो उसमें ना कोई एहसासात होते हैं, ना कोई फीलिंग्स होती हैं उसमें, और वो फिर तो मियां नवाज शरीफ जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी यही है कि ये जो मजहबी मुनाफरत फैली जाती है ये उन मदरसों की पैदावार है, और ये जो मुनाफरत की जब इंतहा होती, जब ये कल्मिनेट करती है, तो इंतहा पे जाकर ये खून व फसाद ये बर्पा करने पे ये। अब देख लीजिए, हम तारीख से सबक सीखते हैं, तो जनाब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप 50 बरस पीछे चले जाइए, जो वक्त है हज़रत अब्दुल मुतलब अलैहिस्सलाम का, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का, इनके दौर में देख लीजिए कि दो बड़े जो कबीले थे बनू हाशिम और बनू उमैया, उनके दरमियान में बनू उमैया की तरफ से जब देखा कि उनकी वो इज्जत नहीं बनी, उनकी वो पजीराई नहीं हुई दुनिया में भी और मक्का के रहने वाले लोगों में भी, बनू हाशिम ने अपने किरदार से अपनी इज्जत बनाई, लेकिन बनू उमैया के जो है उसके हिस्से में, उसके नसीब में ये इज्जत नहीं आई, तो वो अपने किरदार को बेहतर करने की बजाय, रिफॉर्म करने की बजाय, उन्होंने एक मुनाफरत का एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रूमिंग करनी शुरू कर दी अपने लोगों में। और वही जो आज से 1400 बरस पहले जनाब सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सुफियान के बाबैन, जो अबू सुफियान की तरफ से मुनाफरत फैलाई गई, फिर मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जमाने में अबू सुफियान का बेटा माविया आ गया, उसकी तरफ से वो मुनाफरत जो है वो जारी रही बनू उमैया वाली। फिर नीचे देखिए आप आए यजीद की, और साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो उसका शिकार हुए यजीद की उस मुनाफरत का, ये आहिस्ता चलती आ रही है। यही मुनाफरत मदरसों के जरिए, लिटरेचर के जरिए जो छपाया छापा जाता है उसके जरिए हुसैनियत भी परवान चढ़ती रही, और उधर से जो है वो मुआवियत भी परवान चढ़ती रही, और आज भी वो देख लीजिए कि वो बरसरे पैकार हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फिक्र को शिकस्त देने के लिए। लेकिन देखिए, इसमें जो एक मुझे आज बड़ी खूबसूरत बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद आ रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोज़े महशर मेरे लिए ये कितनी बड़ी मेरे लिए ये जो है सआदत होगी कि मैं मजलूमीन में से होऊंगा और दूसरे लोग जालमीन से होंगे। तो बात वही है कि आज भी देखिए, आप अगर देख लीजिए पाकिस्तान की सोसाइटी में या दीगर दुनिया में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, शाम में सीरिया में देख लीजिए, या बाकी इलाके में जहां दहशतगर्दी हो रही है, तो वहां देखिए कि जो जुल्म करने वाला है उसका फिक्र भी परवान चढ़ा है, और जो मजलूम है उसका भी फिक्र परवान चढ़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है, देखा जाए तो ये एक बड़ी देर के बाद उनकी तरफ से एक एक बड़ा पॉजिटिव उनका ये ओपिनियन सामने आया, जिसका उन्होंने बरमला तरीके से इजहार भी किया है, और वो भी इजहार किया है एक तीसरी जो यानी मजहबी गैर मुस्लिम जो है मजहब से ताल्लुक रखने वालों का, जो अब आ रहा है क्रिसमस उस मौके पर, तो ताकि ये सिग्नल जो वेस्ट में भी जाए, मजहब क्रिश्चियनिटी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों में भी जाए कि एक्सट्रीमिज्म शिद्दत पसंदी जो है, जब तक इसका कला कुमा नहीं करेंगे तब तक आप दहशतगर्दी को आप नहीं रोक सकते। ये दहशतगर्दी इंसान के जहनों में होती है। अंग्रेजी में एक मुहावरा कहा जाता है, द इंसरेक्शन ऑफ आइडियाज ऑलवेज प्रोसीड्स टू इंसरेक्शन ऑफ आर्म्स। जब जहन में भौंचाल आए, नफरत के समंदर ठाठे मारते नजर आए, जब जहन में नफरत और मुनाफरत के तलातम जो है इन मदरसों से परवान चढ़ते वो जो उभर रहे हों, तो इंसान को फिर बंदूक उठाने या बम उठाने में हार्डली एक स्टेप लेना पड़ता है, वो लोग एक आसानी से वो स्टेप ले लेते हैं। इसमें स्टेट की चूंकि अहलियत इस्तताअत काबिलियत जो है वो चूंकि है ही नहीं, स्टेट की प्रायोरिटी तरजीहात जो हैं वो हैं ही नहीं, लिहाजा वो दंदनाते लोग फिर रहे हैं, उन पर किसी किस्म का काबू नहीं है। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं उनके पास रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स के रिसोर्सेज भी, इक्विपमेंट है उसके भी नहीं, इंटेलिजेंस शेयरिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग का कुछ नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है। छोटे छोटे शहरों में जहां मदरसे कायम हैं वहां जो काबिल और काबिलियत रखने वाले अहलकार हैं वो छोटे शहरों में वो जो है नौकरी नहीं करते, मुलाजमत नहीं करते, कि उनके बच्चे बड़े शहरों में पढ़ रहे होते हैं। अब देखा जाए कि जो सिंध में एक अहलकार जो है जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो सिंध में तैनात है तो उसके बच्चे कराची में पढ़ रहे होंगे और वो चाहेगा वीकेंड पे वो कराची चला जाए। इस तरह बलोचिस्तान का है तो वो कोयटा में रहना चलेगा। इस तरह को सरहद में है खैबर पख्तूनख्वा में तो वो चाहेगा उसके बच्चे पेशावर में पढ़ रहे हैं और वो पेशावर या इस्लामाबाद में या एबटाबाद में रहे। को पंजाब में अगर लॉ इन्फोर्सिंग एहलकार है वो चाहेगा कि लाहौर में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो लाहौर के करीब रहे। तो छोटे शहरों में जहां ये मदरसे कायम हैं इनके बारे में कोई मॉनिटरिंग का एज अ मैकेनिज्म अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ कि उनको जो मॉनिटर करे। फिर यही जो देखें मदरसे जो हैं ये 18 से 20 हजार, इन्हीं के आउटफिट्स जो हैं, इन्हीं की फैकल्टी के जो लोग जो पढ़ाने वाले हैं सेमी लिटरेट से लोग होते हैं, सिंगल ट्रैक माइंडेड होते हैं और एक ही तरह की तालीम देते हैं, मुनाफरत की तालीम, और वो उन्हें स्ट्रेंथ देती है। आर्गूमेंट तो होता नहीं है, लेजिटिमेट आर्गूमेंट नहीं होता, कोई तदब्बर नहीं होता, इस्तदलाल उन लोगों में नहीं होता। तो इनमें एक ही शिद्दत पसंदी है। और फिर जब ये लोग एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं कि ऑल राइट आपके फला एमएनए फला एमपीए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे 5 से 6 हजार वोट होंगे, हम दे देंगे तुम्हें, इलेक्ट करवा देंगे, लेकिन जब तुम असेंबली में जाओगे, जब तुम हुकूमत का हिस्सा बनोगे तो फिर हमारी पॉलिसीज होंगी, हमारे बच्चे गिरफ्तार नहीं होंगे, हमारे शिद्दत पसंद गिरफ्तार नहीं होंगे। तो फिर इसी तरह से लोकल पुलिस को ये ऑर्डर मिल जाते हैं, डीपीओस को, नीचे एसडीपीओस को मिल जाते हैं कि फलां मदरसे पे थोड़ा हाथ हल्का रखना है। तो ये एक देखिए इस मुनाफरत को परवान चढ़ाने में हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की इनकैपेसिटी इनएबिलिटी और हुकूमत की दो तरजीहात का जो जो है वो कमी जो है या ना होना जो है वो भी इन लोगों की मुनाफरत को बढ़ाता जा रहा है। जहन में इस हद तक मुनाफरत आ गई है कि अब किसी को कत्ल करना, देखे इस्लाम में तो चींटी को भी नहीं मारा जा सकता, इस्लाम में तो ये है कि अगर आपने किसी गैर मुस्लिम की भी आपने जान ली बगैर किसी जिहाद की उस जो है उस हुक्म के जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे सकती है, वो जिहाद का हर इंसान नहीं दे सकता, हर इंसान उसका हुक्म नहीं दे सकता जिहाद लड़ने के लिए। जिहाद लड़ने के लिए इमाम का हुक्म चाहिए या इमाम का जो नायब है कहीं बैठा हुआ तो कोई उसका हुक्म के तहत ही होता है। आजकल हर कोई उठता है, एक छोटे से मदरसे का मुंशी जो है जिसको अरबी बोलनी आ जाती, चार हदीसें रट लेता है और चार कुरानी आयात को रट के उसका फैब्रिकेटेड इंटरप्रिटेशन जो है वो एक जो है वो लेके वो किसी को उकसा देता है। यंग बच्चों पे 18-20 साल बच्चे गरीब घरों से आए हुए, वो कहता है कि ऑल राइट फलां जगह जाओ, फलां इमाम बारगाह में जाओ, फलां मस्जिद में जाओ, ये बम ब्लास्ट कर दो तुम जन्नत में जाओगे। अब देखिए तज्जिया करने की सलाहियत तो दी नहीं जाती
जी जी।
वो मैंने जैसे कहा कि सिंगल ट्रैक एजुकेशन दी जाती है मदरसों में। तो ये मुनाफरत पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं मायूस नहीं हूं मैं अल्लाह ताला से, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत या हुकूमत के अमायदीन या सियासी क्यादत पाकिस्तान की है या जो सरकारी ढांचा जो है हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी का वो इस चीज का अहल है या उनमें पॉलिटिकल विल है इस चीज की कि इस मुनाफरत को वो कम करे। कोई ऐसा प्रोग्राम हमें नजर नहीं आ रहा अगले इवन 5 से 10 बरस के अंदर भी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची में पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार राशिद अहद साहब मौजूद हैं। राशिद अहद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब अभी आपने गुफ्तगु दोनों तजिया निगारों की मुलाहिजा फरमाई होगी। बहरहाल यावर बुखारी साहब का ये कहना बहुत हद तक सही है कि पाकिस्तान के अवाम में फ़िरका परस्ती नहीं पाई जाती है, ना उनके दरमियान मजहबी मुनाफरत है, लेकिन मजहबी मुनाफरत तो पाकिस्तान के मुआशरे में है, मौजूद है। और बकौल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के कुछ लोग हैं जो मजहबी मुनाफरत फैला के फसाद बपा करते हैं, और उन्होंने ये बात भी बहुत हद तक सही कही है कि जो लोग गिरजाघरों पर हमले करते हैं उन्हें मसाजिद के तकद्दस का भी कोई पास नहीं है, वही मसाजिद पर भी हमला करते हैं। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान में बहरहाल दहशत तो लोगों में पाई जाती है, दहशतगर्दी का खौफ तो पाया जाता है। ये जो दहशतगर्दी का खौफ है, ये जो लोगों के अंदर दहशत बैठी हुई है कि कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी कोई बम फट सकता है, हमला हो सकता है, खुद ये जो फिज़ा है, आप क्या ये नहीं समझते हैं कि ये फिज़ा खुद पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान के ढांचे के लिए, पाकिस्तान की बुनियादों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और संजीदगी के साथ इस फिज़ा को ख़त्म करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल जनाब, ये पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है, ये दहशतगर्दी की जो फजा है ये उसके वजूद के लिए खतरा है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, और अगरचे अवामी सतह पर फिरकावारियत नहीं पाई जाती, फिरकावाराना तअस्सुब नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसी कुवतें हैं जो गुरोहों के दरमियान, मजहबी फिरकों के दरमियान जब चाहती हैं उनके अंदर ऐसे इख्तलाफात ईजाद कर देती हैं जिसके नतीजे में वो
जी कराची से कुछ प्रॉब्लम आ रही है रबते में। बुखारी साहब, जनाब बहुत से तजिया निगारों का कहना है कि दहशतगर्दी के बहुत से अवामिल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी इस वक्त पाई जाती है इसका बुनियादी आमिल मजहबी मुनाफिरत और फिरकावाराना इंतहा पसंदी है, जिसकी झलक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बयान में भी नज़र आई कि वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं इसकी बुनियाद मजहबी मुनाफिरत है। आप क्या कहते हैं इस बारे में?
जी शराफत मेहदी साहब, मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर, पाकिस्तान के मुआशरे में एट द लार्ज जो है वो कोई मजहबी मुनाफरत पाई जाती है या कोई फ़िरका वाराना तासुब इस हद तक पाया जाता है कि अवाम बाहम आपस में दस्तो ग्रेबा हो जाएं, ये नहीं है, ये अवाम में नहीं है ना ही। अभी मैं प्रोफेसर एजाज साहब,
नहीं मेरा सवाल देखिए बुखारी साहब, देखिए यहाँ गलत फहमी ना हो मदरसे बुखारी साहब, ये गलत फहमी ना हो, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं इस बात पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर मजहबी तासुब या फ़िरका वारियत या मुनाफिरत पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मजहबी मुनाफिरत है, फ़िरका वाराना इंतहा पसंदी है, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इशारा किया है कि कुछ लोग फ़िरका वारियत और मजहबी मुनाफिरत फैला के फसाद बपा करते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी पाई जाती है, जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं, चाहे वो गिरजाघरों पर हमले हों, चाहे इमाम बारगाहों पर हमले हों, चाहे मजहबी जुलूसों पर हमले हों, चाहे मसाजिद पर हमले हों, इनके पीछे मजहबी मुनाफिरत और मजहबी इंतहा पसंदी क्या कारफरमा नहीं है? मेरा सवाल ये।
जी मैं बिल्कुल इसी तरफ ही आना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पर मजहबी मुनाफरत फैलाने की साजिश जो हुई है वो उस साजिश के पस पुष्ट जो है आज से बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमें, जब यहाँ पर रशिया की डिसइंटीग्रेशन के लिए मुजाहिदीन पैदा किए गए और फिर उन मुजाहिदीन का जो ग्रोह पैदा किया गया था वो अमेरिका की वार लड़ने के लिए, अमेरिका और रशिया की वार यहाँ लड़ने के लिए वो जो ग्रोह पैदा किया गया था, उन ग्रोहों के पीछे फिर जब वो रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद उन मुजाहिदीन को जो है तालिबान का नाम दिया गया और तालिबान का नाम देकर अमेरिका ने उन्हीं को अपने आलाकार के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्हीं की सरकोबी के लिए खुद भी यहाँ पर आ गया ताकि वो यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को जो है वो डिसइंटीग्रेट कर सके, क्योंकि अमेरिका और इस्तेमारी कुवतों का मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा हदफ जो है मजबूत इस्लामी ममालिक हैं जो कि इस वक्त दुनिया में मजबूत तरीन इस्लामी ममालिक समझे जाते हैं, उनमें पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया ईरान ये नंबर वन हैं। इन दोनों के ख़िलाफ़ उनकी साजिशें चल रही हैं और ये देखें उनका साथ जो है हमारे वो नादान जो मुसलमान ममालिक के सरबराहान हैं वो दे रहे हैं, जो वहाँ पर बैठ के वो जो ग्रोह एक पैदा किया गया, इंतहा पसंदी की सोच जो पैदा की गई इस खित्ते में, वो एक मखसूस ग्रोह है, वो अवामुन्नास नहीं है, वो एक मखसूस ग्रोह है जो बैरूनी कुव्वतों का आलाकार बनकर अपनी इंतहा पसंदी की सोच जो है पाकिस्तानी मुआशरे में फैलाना चाहते हैं। इसमें ये कहा जाए कि जो पाकिस्तान में जो दीनी मदरसे हैं वो मुनाफरत फैला रहे हैं, नहीं, मैं इस सोच से मैं इतफ़ाक़ नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में दीनी मदरसे जो हैं मिलत तशय्यो के भी हैं और अहले सुन्नत के भी हैं, वो सारा है। हाँ, लेकिन जब कोई वो तीसरा गिरोह जो इंतहा पसंदी का गिरोह है, जो दहशत गर्दों का गिरोह है, जो बैरूनी इस्तेमारी कुव्वतों के आलाकार हैं, वो जब इस मुआशरे को खोखला करने की साजिश पर अमल पैरा हो, तो वो जब ये ज़ाहिर है कि ये जो इख्तलाफात तो मौजूद हैं कि फ़िक़्ह जाफरिया और है, फ़िक़्ह हनफिया और है, ज़ाहिर है वो, लेकिन वो ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं कि फ़िक़्ही सतह पर तसादुम हो। यह तसादुम जो है, तसादुम की फ़िज़ा फ़िक़्ही सतह पर, उलमा की सतह पर, मदरसों की सतह पर नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो तीसरी कुव्वत जो है वो आकर वो आग लगाती है, तो उसमें कुछ लोग यहाँ से भी उनके आलाकार बन जाते हैं, ये अलग बात है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस वक्त ये देखें, जब ये पिंडी का वाकया हुआ, तो हर साल वहाँ से जुलूस गुजरता है, उस मदरसे के बाहर से हर साल जुलूस गुजरता है, लेकिन वो तीसरा ग्रोह जो साजिशी ग्रोह था, वो लोग आए, उन्होंने वहाँ पर साजिश की, वहाँ पर तकरीरें की गई, और जुलूस अभी बहुत दूर था, जुलूस तो उस जगह से दूर था, जो जो अहले तशय्यो थे वो तो अपनी अदादारी में मसरूफ थे कि वहाँ पर काले कपड़े पहने लोग भी आ गए और उन्होंने मदरसे पे हमला भी कर दिया, और आनन फानन में मदरसे पे भी हमला हो गया, लोग भी मारे गए, आग भी लग गई, और जुलूस जो है वो 1.5 फरलांग के फासले पर था। तो ये इस गिरोह को जो है नॉमिनेट करना, इस गिरोह के जो है इसको देखने के, ये इसको सामने लाना, इसको बेनकाब करना है कि ये जो तीसरा गिरोह है जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी भी फैला रहा है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी भी फैलाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैला कर ये जो है आपस में अवाम को लड़ाने की कोशिश में है, इस गिरोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने वहाँ पर बात की है, क्या वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ये लोग जो पिंडी में वाक़या हुआ ये लोग नज़र नहीं आए? आज तक जो क्रैकडाउन हो रहा है वो नज़र नहीं आया? आज क्रिसमस के हवाले से उन्होंने ये बात की है? हो सकता है ये बात, मैं एक बयान की हद तक तो उनको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि हुकूमत कोई अमली इकदाम कर रही हो, कि हुकूमत आज भी रट लगा रही है कि उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, वो जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इनके साथ बिल्कुल हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि हुक्मरान क्यों बेबस हैं ऐसी कुव्वत के ख़िलाफ़। ऐसे जो गिरोह है वो एक मखसूस ग्रोह है। जहाँ तक दीनी मदरसों की बात की गई कि दीनी मदरसे, मैं नहीं समझता दीनी मदरसों में ऐसा ही कोई सोच पनप रही हो कि वो मजहबी मुराफरत फैलाई जाए। वो फ़िक़्ही इख्तलाफात तो चलते आ रहे हैं सदियों से, वो चलते गए। अब जो एक मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये एक बड़े वसूख के साथ मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने ये दहशत गर्दाना या ये खुदकुश हमला आवर जो है ये पैदा किए हैं, ये मदरसों से नहीं पैदा हो रहे, ये तो उन्होंने उधर ही अपनी जो है नर्सरियाँ पैदा कर ली हुई हैं, या वो लोग जो यहाँ से जो ये जो ईदी घर और दूसरे घर जिनमें लावारस बच्चे हैं उनको ले जाते हैं और मखसूस कैंपों में रखकर उनको, और कोई सोच दी ही नहीं जाती उनको, वो उन्होंने हज़ारों की तादाद में वो पैदा किए हुए हैं। ये अभी जुंदल्ला की बात हुई पिछले दिनों, उनके पास उन्होंने खुद कहा जी हमारे पास 20-25 हज़ार फिदाइन हैं। वो फिदाइन कहाँ से? मदरसों से? नहीं, मदरसों से नहीं पैदा हुए, वो उन्होंने वहीं पर जो कैंपों में पैदा किए, कैंपों में बच्चे रखे, और उनको कोई दुनिया का, कोई मुआशरे का, कोई दुनिया की होश ही नहीं आने दी। एक मखसूस इलाके में जंगल बियाबान वीराने में कैंप लगाकर उनकी बचपन से ट्रेनिंग की जाती है, और उनके अंदर शऊर पैदा ही नहीं होने दिया जाता, इंसानी शऊर। वो तो एक किस्म के वो जो ब्रायलर चूज़े जो होते हैं उनको वो पैदा करते हैं और उनको बड़ा करते हैं और अपने अपने उसके लिए मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक गिरोह जो है उसको मुशख्स करने की ज़रूरत है, उन कुव्वतों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान के मुआशरे में जो मजहबी मुनाफरत फैला कर और अवाम को बाहम दस्तो ग्रेबां करना चाहते हैं और अवामी सतह पर सिविल वार किस्म की कोई कोशिश करना चाह रहे हैं वो लोग, अब उन लोगों ने इस हद तक हुक्मरानों को यरमाल किया हुआ, हमारे हुक्मरान उनके खिलाफ बात करने में गुरेज़ हैं और खाली खोली सिर्फ बयानात की हद तक वो करते हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि मैंने पहले भी बात की कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा दहशत गर्दों को। मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना, ये जो दहशत गर्द जो हैं, ग्रोह हैं, जो ज़ाहिर कबायली इलाकों में पनप रहे हैं, कबायली इलाकों से ही उनके जो रूट्स मिलती हैं और वो उनके लोग यहाँ पर शहरों में आकर
बताते
हैं, उनको वो रोकने में फौज जो है अब अपना किरदार अदा करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम राशिद अहद साहब से माजरत खां हैं कि उनसे हमारा रबता बरकरार नहीं हो सका, और एजाज हुसैन साहब से भी कि दोबारा हम उनकी तरफ नहीं जा सकेंगे। हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम के करीब پہنچا چاہتا ہے. بہرحال پاکستان میں مذہبی منافرت اور انتہا پسندی پھیلانے کے منظم نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, چاہے یہ نیٹ ورک بقول اعجاز حسین صاحب کے دینی مدرسوں کے نام پر کام کر رہے ہوں یا کیمپوں میں انتہا پسند اور دہشت گرد اور خودکش بمبار تیار کیے جا رہے ہوں. پاکستان میں چونکہ جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں ان میں ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن کے ذہنوں میں بقول اعجاز حسین صاحب کے کہ مذہبی منافرت اور انتہا پسندی اور تکفیریت اور یہ سوچ بھری جاتی ہے کہ ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب ناحق ہیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مذہبی منافرت اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی پھیلانے کے جو نیٹ ورک منظم طور پر کام کر رہے ہیں انہیں ختم کیا جائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.